ओम शांति। भाई बहुत पीछे तक चले गए हैं, शायद अभी आए होंगे। आगे आ जाओ, डंगाई जी के पीछे सोफा इधर भी और इस सोफे पे भी आ सकते हैं। पीछे बैठे भाई आगे आ जाओ, इधर साइड में भी आ सकते हैं। ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा की इस वरदान भूमि में, तपोभूमि में, भाग्य विधाता बाबा के बच्चे पहुंचे हैं, ये तो हमारा सचमुच बहुत बहुत सौभाग्य है। संगम युग की इन महान घड़ियों में जब हम बाबा के बच्चे ऐसी महान तपस्वी आत्माओं का साक्षात्कार कर पाते हैं। लोग पूछते हैं, आज की दुनिया में कोई ऐसा है जो तपस्या करता हो, जो निस्वार्थ हो? तो ऐसे विश्व की सेवा में तत्पर, निस्वार्थ भाव से सदा सबके कल्याण में लगे हुए विश्व कल्याणी हमारी परम श्रद्धेय, परम आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी, आप हमारे बीच में आए हैं। दादी जी का बहुत बहुत तहे दिल से अभिनंदन, स्वागत। बाबा का घर है, दादी जी हमारे बीच में हमारी दादी हैं। हम दादी पर विशेष हक रखते हैं, क्यों? यूं तो दादी इंटरनेशनल है, लेकिन दादी हमारी राजस्थान की दादी है, इसलिए हम अपनी दादी को अपने बीच में पाकर इतने अभिभूत हो जाते हैं, इतना भावनाओं में आ जाते हैं, लगता है सचमुच हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो हमारी दादी हमारे साथ है, हमारे बीच में है। पुनः दादी जी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। बहनों से भी अनुरोध है, दादी जी का स्वागत फूल और तिलक से करेंगे। और इसके साथ साथ आज की इन शुभ घड़ियों में दादी जी और हम सब का स्वागत करने के लिए हल्दर भाई भी पहुंच गए हैं। वे भी अपनी मधुर वाणी से, संगीत से बाबा के बच्चों का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। हल्दर भाई,
ओम शांति। यह हम सभी भाई बहनों का सौभाग्य है कि मधुबन में युग भट्टी का लाभ लेना, माना दादियों के संग के रंग में रंगना। सचमुच बाबा ने ऐसे बनाया दादियों को कि इन दादियों को देख के बाबा याद आते हैं। इसलिए आप बहुत बहुत पद्मा पद्म भाग्यशाली हैं जो बाबा ने जो मौका दिया है युग भट्टी का, पांडव भवन किस प्रांगण में। तो आप सभी भाई बहनों को तहे दिल से मधुबन की तरफ से, इन दादियों की तरफ से, बाबा की तरफ से मुबारक हो, मुबारक हो, बधाई हो।
दिल से कहने वाले करते हैं स्वागत आपका हम, दिल से मधुबन वाले दिल से मधुबन वाले।
मेरा बाबा दिल से कहने वाले, करते हैं स्वागत आपका हम दिल से मधुबन वाले। मधुबन भट्टी करने पधारे जयपुर म्यूजियम वाले, करते हैं स्वागत आपका हम दिल से मधुबन वाले। मेरा बाबा दिल से कहने वाले, करते हैं स्वागत आपका हम दिल से मधुबन वाले। दिल से मधुबन वाले, दिल से मधुबन वाले, दिल से मधुबन वाले।
भवन में मिला है भट्टी का मौका, बाबा की याद आंगन दिलाता पवन पवन का झोंका।
बाबा की भूमि पांडव भवन में मिला है भट्टी का मौका, बाबा की याद आंगन दिलाता पवन पवन का झोंका। सुषमा दीदी के नैनों में घूमे दिल वो सार वाले, करते हैं स्वागत आपका हम दिल से मधुबन वाले। मेरा बाबा दिल से कहने वाले, करते हैं स्वागत आपका हम दिल से मधुबन वाले, दिल से मधुबन वाले, दिल से मधुबन वाले, दिल से मधुबन वाले।
अरमानों को हम करें आओ साकार, मौन तपस्या भट्टी में हो संस्कारों का अब संस्कार।
बाबा दादी के अरमानों को हम करें आओ साकार, मौन तपस्या भट्टी में हो संस्कारों का संस्कार। ओ खुशनुमा हमारा जीवन, कहते हैं बाबा निराले, करते हैं स्वागत आपका हम दिल से मधुबन वाले। मेरा बाबा दिल से कहने वाले, करते हैं स्वागत आपका हम दिल से मधुबन वाले, दिल से मधुबन वाले, दिल से मधुबन वाले, दिल से मधुबन वाले।
माया की गलियां कुछ भी याद न आए, नेह सिंधु में सब भुला कर याद में रहे समाए।
देह दुनिया माया की गलियां कुछ भी याद न आए, नेह सिंधु में सब भुला कर याद में रहे समाए। संगारियों के रंग का बदर पाते हैं किस्मत वाले, करते हैं स्वागत आपका हम दिल से मधुबन वाले। मेरा बाबा दिल से कहने वाले, करते हैं स्वागत आपका हम दिल से मधुबन वाले। मधुबन भट्टी करने पधारे जयपुर म्यूजियम वाले, करते हैं स्वागत आपका हम दिल से मधुबन वाले। करते हैं स्वागत आपका हम दिल से मधुबन वाले, 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 दिल से मधुबन वाले।
बहुत बहुत धन्यवाद हल्दर भाई और आपके साथी भाई नरेंद्र भाई, आपने सबका स्वागत किया, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। देख लो मधुबन वाले कितनी रौनक, कितना उमंग भरने वाले हैं। पुनः आपका बहुत बहुत, दादी जी को भी उमंग आ रहा है, दादी फैल जाएंगे फूल सारी चादर पर।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तपस्वी मूरत ओम शांति कैसे कहेंगे? ओम बोलते जाए और अपने शांति धाम पहुंच जाए, और शांति धाम तब पहुंचेंगे, कौन पहुंचेगा शांति धाम? आत्मा ही शांति धाम पहुंच सकती है। इसलिए स्वाभाविक ओम अर्थात मैं शुद्ध आत्मा, सदा याद करो मैं शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा याद करने से हमें अपनी ओरिजिनलिटी याद आएंगे, क्योंकि ओरिजिनल रूप में अनादि काल में आत्मा अनादि अविनाशी है। तो तपस्या के अंदर यह बात हम ऐसी पक्की कर दें जो चलते फिरते उठते बैठते दिल के अंदर याद आता रहे मैं शुद्ध आत्मा। सर्वशक्तिवान की संतान, शांति धाम की रहने वाली। अब देखो ये तीन शब्द है अपना, जब आत्मा अपने ओरिजिनल रूप में है तो इन तीनों का संबंध प्रैक्टिकल आत्मा के साथ तो प्रैक्टिकल हुआ ना, तो वो प्रैक्टिकल संबंध जो है आत्मा के साथ हमें अपने अंदर ऐसा ही अनुभव हो, महसूस हो। जब हम लोग शुरू शुरू में आए हैं और आप लोगों ने सुना है शुरू में ये एक लेसन था, जब हम जिज्ञासुओं को समझाते थे 7 दिन तक ये एक लेसन, आप सोचो क्या क्या बोलते होंगे। अभी तो हम नहीं कह सकती क्या क्या बोलते थे, पर 7 दिन एक ही लेसन, मैं आत्मा हूँ। जो समझाएंगे आज सारा दिन इसका अभ्यास, देखो कहाँ तक आप कर सकते हो। दूसरे दिन आएंगे सारा वो पूछेंगे क्या क्या किया, कितना याद किया, कुछ भी जो सुना उसमें कुछ भी मिस हुआ फिर से, तो पक्का हो जाए। और हम लोगों को अंदर में ऐसा पक्का हो गया, चलते फिरते कुछ भी काम करते नहीं, अंदर वो धुन लगी रहती है, भक्ति मार्ग हमारा ही तो यादगार है। ऐसे महसूस हो भक्ति मार्ग हमारा यादगार है, तो क्या क्या भक्ति मार्ग में करते हैं, भगवान को याद करने के लिए क्या क्या करते हैं, कितना धुन लगाते रहेंगे, मंत्र रखते रहेंगे, कुछ न कुछ ऐसे साधन, कुछ समय घंटा दो घंटा पढ़ते ही रहेंगे कुछ न कुछ, तो ये हमारा अखंड याद। अब ऐसी हमारी अखंड याद बनी रहे, तपस्या माना तपस्वी मूरत, जो हमारी मूरत ऐसी लगे कोई के याद में खोए हुए हैं। हमारी तपस्या क्या है, बाप की याद में खोए रहे, अर्थात बाप की याद हमारे अंदर ऐसी बन जाए जो बाप की मूरत हमारी सूरत से नजर आए, हमारी सूरत बाप की मूरत बन जाए। वैसे भी देखो जब कोई की बहुत याद आती है तो उनके जो भी गुण होंगे वो अंदर ही अंदर हमें वर्णन होते रहेंगे, जैसे जैसे उनकी वो बातें वर्णन होंगी वैसे वैसे हमारे चेहरे के चिन्ह बनते जाएंगे, होता है ऐसा या नहीं, है ना ऐसा। तो ये हमारा प्रैक्टिकल, जो हम बाप की महिमा गाते हैं, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, ये महिमा, पर महिमा उनका स्वरूप, सामने जाओ बाबा के तो वो फीलिंग आएंगी, जब जाओ बाबा कुछ न कुछ ज्ञान की ऐसी बात जो हम उसमें मग्न हो जाएं, तो ये जो गायन है, गायन हमारे कर्मों का, हमारे स्वरूप का, जिन्होंने बाप का अनुभव किया उस अनुभवों का गायन भक्ति मार्ग में, तो भक्ति मार्ग हमारा यादगार। तपस्या में बैठना माना हमें अपनी आदि काल की बात, आदि नहीं परंतु अनादि काल की बातें, अनादि स्वरूप और उस अनादि स्वरूप की जो विशेषताएं, वह ऐसी स्मृति में आती जाए जो उन स्मृतियों से हम जैसे कि वो अंदर से वो हमारा रूप इमर्ज हो जाए, परंतु वो तब होगा जब वो निरंतर याद, अखंड याद बनी रहे। इसलिए विशेष तपस्या का महत्व, भले हम बैठे कितना भी समय परंतु लगन मन की एकाग्रता पूरा समय कुछ भी करते रहें, चलते रहें, खाते रहें, एक दो को देखते रहें, बात करते रहें, परंतु हमारे अंदर वो स्मृति ऐसी बन जाए जैसे हमारा स्वरूप वो ही बना हुआ है, जो हमारा स्वरूप बाप के साथ जब रहते थे, कहाँ रहते थे, उस परम धाम, ऊंचे ते ऊंचा धाम, शांति धाम, तो जो ऊंचे ते ऊंची बातें हैं, तपस्या में बैठ करके हम अपने उस अनादि स्वरूप, अनादि स्वरूप की जो क्वालिटीज हैं, उसको को हम याद करते ऐसे याद करें जो वो क्वालिटी अंदर हमें महसूस होने लगे। फिर देखो तपस्या का हमको कितना मजा आता है। इसलिए तपस्या में अंतर्मुखता, ये हम मौन किस लिए रखाते हैं? भले आपको शायद अभी मौन के लिए बोला नहीं गया होगा, परंतु तपस्या की ये एक सहज विधियां हैं। वैसे तो तपस्या में ऑटोमेटिकली मौन हो जाता है, बात करने की दिल नहीं होगी। हम लोग जब तपस्या करते थे, जब हम कराची में थे, तब तो हम रात 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 को 12 बजे से सुबह को 5 बजे तक करके एक आधा बार उठेंगे, कभी तो उठते भी नहीं थे। ऐसी एकाग्रता, क्योंकि हम लोग तो जब आए बाबा के पास तो पुराना सब भूल गया ना। हम लोगों की तो वो थी है उस समय, जो अभी तो भूलने के लिए कितनी मेहनत आपको करनी पड़ती है, और हमारा तो वो अनुभव था कि मेहनत तो थी ही नहीं भूलने के लिए। मेहनत क्या, आए तो बाबा के सिवाय कुछ नजर नहीं आए। एक बार निकल आए घर से, जो भी माँ बाप संबंधी, जो भी घर दुनिया, एकदम जैसे हमारे लिए है ही नहीं। अभी हमारे लिए बस बाप और हम बाबा के साथ हैं और बाबा के पास हैं। ऐसी लगन शुरू में, जिस कारण जो बाबा बोलता जाए बस वो ही हमारे लिए है, और कुछ जैसे हमने न सुना है न कभी हमें याद है, ऐसे हमें भूल गया। तो वो तो कहेंगे शुरू की स्थापना बाप ने अपने पूरे शक्ति से की, तो शुरू में वो वाइब्रेशंस ऐसे थे जो हमें आने से सब कुछ भूल गया, बस बाबा और हम और जो भी परिवार है, सचमुच हमारा ये परिवार है, ऐसा नेचुरल रूप से हम रहते थे। परंतु अभी तो नॉलेज का विस्तार है, तो अब नॉलेज के आधार पर हमें तपस्या स्वरूप, अभी देखो बहुत अच्छा, कितने आप भाग्यशाली, मधुबन में तपस्या करने के लिए मिला। और तपस्या का फायदा लाभ हमें तब होता है जब हम एक अंदर से अपनी रुचि से, हमें मौन में रहना है। किस लिए बात करें, कौन सी बात करें, क्यों बात करें? तपस्या माना बाप के रंग में रंगे रही, और अभी तो सहज बाप ही हमें नॉलेज देते हैं। जो नई नई नॉलेज हमने सुनी है बैठे तपस्या में, ऐसी बाबा की ऊंची ऊंची बातें याद करते रहे। शुरू में इतना विस्तार नहीं, परंतु बाप को देखते हुए जैसे कि हमारे सामने भगवान खड़ा है। भले उस समय शुरू में मान्यता श्री कृष्ण की थी, श्री कृष्ण ही भगवान है, परंतु वो होते भी हमारे सामने तो साक्षात न शिव का परिचय नहीं था शुरू में, परंतु प्रकाश रूप तो था हमारे सामने। तो बाबा को देखते हमारे को जैसे कि वो प्रकाश रूप ही नजर आता था, और प्रकाश को देखते रहो तो खुद भी प्रकाश हमारे सामने आएगा, तो हमारा प्रकाश रूप हो जाएगा ना। तो तपस्या वो विधि है जिससे हम स्वयं को, जो बाप के क्वालिफिकेशंस है, जो बाप के कर्तव्य है, जो बाप हमें, जितनी अभी हमने बाप से ऊंची ऊंची नॉलेज सुनी है, जिस नॉलेज के आधार पर जो बाप का गायन है वो हमारे आगे स्पष्ट है, तो इन्हीं बातों को याद करते हुए बाबा के प्रति जब किसकी भी महानता याद आती है, तो महानता के आधार पर ही उनके साथ इतना प्यार, इतनी उनकी याद, और उस याद के साथ जब हमारा संबंध जुटा हुआ है तो संबंध का अर्थ ये हमारा संबंध रूहानी स्नेह का बंधन। जब जहां रूहानी स्नेह है वहां भूलने की बात नहीं है। हम अपने को ये पक्का कराएं, हमें बाप को याद करके खुशी होती है। क्यों? क्योंकि बाप के साथ हमारा अनादि संबंध है, अनादि रूप। हम भी तो अनादि है, आत्मा अनादि अविनाशी है। जब हम भी अविनाशी, बाप भी अविनाशी, चलो कलप में बिखर गए, इधर उधर अनेक जन्मों के चक्कर में चक्कर लगाते रहे, अब तो बिखरे हुए सब आके मिले हैं, और जब भटक भटक के आके मिलो तो और प्यार जुटेगा। अरे वो फिर से आके मिले, इतना समय बिछर गए, जब बाबा साकार में थे और माताएं आती थी, चलो हम तो पहले आ गए, लेकिन जब शुरू हुआ बाहर वालों का आना, जब माताएं आती थी तो हम देखते थे कैसे माताएं दूर दूर से सामने बाबा को देखा, ऐसे दौड़ दौड़ के उछल के आके मिलेंगी, क्या क्या बोलती रहे जो समय समझ में भी नहीं आवे, अपने प्यार के बोल, बाबा आपको कितना ढूंढा, इतने समय के बाद आप कहाँ गए थे, क्या क्या बोलते थे वो जाने, इतना प्यार। क्योंकि शुरू में एक ही शक्ति काम करती थी, हम तो सब नए नए हो गए ना, उस समय शक्ति कहाँ आई, पुरुषार्थ कहाँ रहा, पुरुषार्थ न करते भी, परंतु ये जो सब कुछ भूल गया और एक किया, कमाल उस बात की थी जब सब कुछ भुला करके मर जीवा, ये हमारा नया जन्म भगवान के पास, अभी हमारा ये नया जन्म है, तो नए जन्म की वो शक्ति, और नया जन्म किसके पास, भगवान के पास। हम उस समय अधिकतर हमारे मुख से भगवान ही निकलता था शब्द, बाबा भी वैसे आमृति से कहते थे, पर जब उस स्नेह में और बाबा को उन्हीं भावना सुन देखते थे और बैठे रहते थे, तो जैसे भगवान के सिवाय और कोई शब्द ही हमारे पास नहीं था। तो अब मधुबन जो बाप का घर है, जहां बाप ने हम बच्चों को इतनी तपस्या कराई है, इस मधुबन में भी हमने बहुत बठिया की, और वो बठी बाबा के अव्यक्त होने पर तो जो विशेष रूप से बठियां चलती रही, उसमें भले क्लासेस भी होते थे, पर विशेष रूप से ये योग बठियां, और योग बठी हम अधिकतर रात्रि को करते थे। अब तो रात्रि को योग नहीं इतना करते हैं, जगाते नहीं है, क्योंकि सवेरे से ही तपस्या शुरू होती है, और उसके लिए तो बहुत अभ्यास चाहिए। फिर भी अगर दिन भर आप आए हैं, अगर अंदर में अपना ये पक्का रखेंगे, अंदर से अंतर्मुख होकर के, क्योंकि अभी इधर और तो कुछ काम नहीं है, यहां हमारा काम तपस्या करनी है, अंदर से तपस्वी मूरत हमारी इमर्ज रहे, भले चलते आगे बठी करते थे, हम एक कमरे से बाहर नहीं निकलते थे, यहाँ भी जब उधर योग भवन में करते थे योग,
ट्रेनिंग सेंटर में भी दादी ऊपर वाला कमरा,
हाँ बस वहाँ, बस उसी कमरे में, और कहाँ भी नहीं जाएंगे, और कोई हमें देखे नहीं, ऐसे हम योग बठी करते थे। अभी तो ज्ञान विस्तार है, जिस कारण ज्ञान से हम अपने को अपने इधर उधर की बातों को हटा सकते हैं, और कहीं हट भी गई है, जब आए तपस्या के लिए और याद करके करें भी क्या, भला करेंगे तो फायदा, और ये हमारी तपस्या खंडन हो जाएंगी। आए हैं तपस्या के लिए तो तपस्या हमारी निरंतर बनी रहे, चाहे भोजन पे जाएं, चाहे इधर उधर चक्कर लगाएं, बस क्लास से उठेंगे जैसे भले संगठन में चल रहे हैं, पर ऐसे जैसे अकेले एकांत में चल रहे हैं। अंदर एक की याद, और याद कौन सी, उसका अंत बाप सागर के समान है। सागर में क्या क्या समाया हुआ रहता है, वो बाबा की ज्ञान रतन, भिन्न भिन्न प्रकार की याद आते रहे, और ऐसे ज्ञान रतन देने वाला बाप, बाप के महिमा में हम ऐसे डूबे रहें जो उसके सिवाय और कुछ याद ही नहीं आए। जब ऐसी याद रहती है तो जो भी अपना पुरानापन होता है वो किनारे हो जाता है। तो हम तपस्या में आए हैं, अंदर ही अंदर ऐसी हम तपस्या करें, अंदर लक्ष्य रखें। जो कुछ ऐसी बात पुरानी पता तो है हर एक को अपना, जो चलते चलते हमें रुकावट डालता है और हम चाहते हैं ये न हो, नॉलेज है, समझ है, बाबा का रोज सुनती है, उसके आधार पर अंदर अगर हम सचमुच अपने से वो प्रतिज्ञा करते हैं, प्रतिज्ञा माना दृढ़ संकल्प, स्वयं को ये भी स्वयं का एक अपने को कहें अपना एग्जाम एग्जाम लेना चाहिए कि बरोबर जो हम अपनी लक्ष्य रखते हैं बरोबर हम अपने लक्ष्य के प्रमाण उसका अनुभव कर पाते हैं। अगर इस प्रकार अपनी ही खुद टेस्ट करें, अपने को एक लक्ष्य दे करके और मुझे ये करना ही है, तो बाबा भी शक्ति देता है, दृढ़ता में शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति दृढ़ता है, और दृढ़ता हमारी कायम रहे तो ऐसा थोड़े कि हम नहीं पा सकते। और विशेष समय है, उठते बैठते चलते फिरते अंदर में वो एक ही लगन हो। हम क्यों बाबा को कहें बाबा याद भूल जाती है, बाबा देखो कितना हमें सहज सहज भाव से मुस्कुराते बोलते हैं। बच्चे कभी कहते हैं क्या बाप भूल गए, अरे तुम बच्चे और कहते हो बाप भूल जाता है, बाप को बच्चा कैसे भूलेगा। तो अपने को हम अभी है बाबा कहते मैं सारी नॉलेज तुम बच्चों को दे चुका हूँ और समझदार बन चुके हो, समझ है, दूसरों को हम समझाते हैं, पर जो हम समझाते हैं, जो कहते हैं, जो समझते हैं, उसको केवल अपने अंदर ऐसा पक्का करें जो सहज स्वयं आपे ही याद आता है। उसके लिए अंतर्मुखता, एकाग्रता और एकांत, एकांत में तो है ही, एकांत माना अकेले, एक के अंत में। अभी अंत बाप ने तो अपना दे ही दिया है, जब हम रहते थे बाबा चक्कर लगाते थे सवेरे सवेरे 5 बजे, हम 4 से 5 योग करते थे और योग के बाद इसी छोटे हाल में यहाँ से निकल के फिर बाबा के साथ इधर ही बाहर, तब बाहर इतना नहीं जाते थे शुरू में, अंदर ही अंदर धीरे धीरे बाबा के साथ साथ सारा झुंड यहाँ से बाबा के कमरे से लेकर के दरवाजे तक धीरे धीरे, बीच बीच में बाबा खड़े हो जाएंगे, फिर आगे चलेंगे, फिर आकर के ये जो ये है ना विजिटिंग सिटिंग रूम, उसके थल्ले पे बाबा खड़े हो जाते थे और फिर सबको केवल मीठी दृष्टि। और इस दृष्टि के समय जैसे कि हम है शरीर में, पर शरीर से हम कौन, जैसे आत्मा अपने परम पिता को देख रही है, वो एक रूहानियत की दृष्टि। अभी हम चलते फिरते अपने अंदर रूहानियत किसको देखें, हमारी रूहानियत इमर्ज रहे, स्मृति रहे, आत्मा आत्मा को देखती। तपस्या माना हर घड़ी हमें स्वयं का अनादि स्वरूप याद रहे और उस अनादि स्वरूप से हम बाप को जैसे कि दिव्य बुद्धि रूपी आंख से देखते रहे। बाप को हम क्या देखेंगे, उसका भी तो वही स्वरूप है, परंतु वो उसका इतना प्रकाश अर्थात इतनी शक्ति अंदर से हमें महसूस हो, जो हम अंदर ही अंदर आत्मा महसूस करे बरूबर कितनी शक्ति बाप की, जो इतने समय की भूली हुई बात बाप ने ऐसी स्मृति दिलाई है जो हम उसको स्वीकार करें। ऐसे लगता है ये यथारथ बात है, तो जो यथारथ है वो हम अभी ऐसा पक्का करें जो सहज भाव से हमें याद आता नहीं, उसके लिए 24 घंटा उसका अटेंशन। और मधुबन हमें तो वो यादें बार बार, क्योंकि देखा हुआ है, साथ रहे है, यहाँ से झोपड़ी में भले अब तो झोपड़ी बनी बनाई ऐसी है जो जाओ तो स्मृति आ जाए, उस समय कोई झोपड़ी बनी हुई ऐसी नहीं थी, थोड़ा हाथ से मना उस समय के लिए टेम्पररी बनाई हुई, परंतु उसमें बाबा के दिन को बैठते थे 11 बजे सवेरे सवेरे, बाबा पहले क्लास के बाद फिर सारा चक्कर लगाएगा किचन इधर उधर, फिर उसके बाद आकर के बैठ जाते थे, फिर उसके बाद ऑफिस में बैठेंगे, जो भी पत्र आए किए उन सब के जवाब देना, सबके पत्र सुन करके उन सब को जवाब देना। उसके बाद 11:30 बाबा के झोपड़ी में बैठते थे, फिर झोपड़ी में बैठे कोई कोई जाएंगे किसको बात करनी है किसको कुछ, तो उधर अकेले के जिनको भी अपनी बात करनी है तो झोपड़ी में बाबा बात करते थे। और उसके बाद थोड़ा समय बाबा को हम छोड़ देते थे क्योंकि सुबह से चलना फिरना हो जाता था, और फिर हम अपने अपने जो जो कार्य मिला हुआ रहता था, फिर बाबा स्नान पानी करके सुबह को भी और फिर दिन में पूरा स्नान करके फिर चक्कर लगा के फिर भोजन पर बैठते थे और मम्मा बाबा दोनों साथ खाते थे। और हम तो फिर अपनी रेस्ट और कार्य में लग जाते थे। इस प्रकार सवेरे से यहाँ तक दिनचर्या, फिर शाम को तो अपना क्लास वगैरह ऐसे होता रहता था, परंतु जो भी आते थे बाबा हर एक को, क्योंकि उस समय इतनी रश तो नहीं रहती थी, थोड़े थोड़े सेंटर भी थोड़े और वो भी पुराने पुराने, शुरू में जो आते थे एक धक से पहचान लिया और बाबा को मान लिया और चल पड़े, जैसे उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। परंतु अभी राजा ही स्थापन हो रही है, हमें भी राजा ही लेनी है, तो बाबा हमें राजाई के लिए तैयार कर रहे हैं, इसलिए अपने में वो राजाई संस्कार, और राजाई संस्कारों का आधार पहले स्वराज्य अधिकारी, हमें अपने कर्म इंद्रियों पर कितना कंट्रोल, चाहे मुख चाहे आंखें, आंखों पर क्या कंट्रोल रहेगा, जब हम किसको देखें बस स्मृति जागृत रहे। जो स्मृति बाबा ने हमें दी है वो स्मृति ऐसी जागृत रहे जो हर कर्म इंद्री जो भी कर्म करे स्मृति स्वरूप से कर्म करे। तो अंदर में वो स्मृति, मैं आत्मा शरीर से ये करा रहा हूँ, मैं आत्मा इन आँखों से देख रहा हूँ, मैं आत्मा इस मुख से बोल रहा हूँ। जब मुझे ये स्मृति है मैं आत्मा मुख के द्वारा बोल रहा हूँ, तो मैं कैसे बोल बोलेंगे? आत्मा तो शुद्ध बोली बोलेंगी, आत्मा तो मीठा ही बोलेंगी, क्योंकि आत्मा आत्मा भाई 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 आपस में प्रेम से बात करेंगी। तो ये सारी अंदर की जो नेचुरल रूप है वो इमर्ज हो जाता है, और उन्हीं विधियों से विधि कर्म वो ही, पर कर्म उस स्मृति स्वरूप से। तो तपस्या का हमें लाभ यही है कि जो हम स्मृति के लिए मेहनत करते हैं, याद के लिए जो हम मेहनत करते हैं, और फिर हमें ये होता है, भूल जाता है और याद करना पड़ता है, तो ये जब हमको 3 दिन विशेष रूप से मिला है, ये लक्ष्य रखें हम स्मृति स्वरूप कितना समय रहते हैं। तो अंदर में वो लगन और उस पर अपना पूरा अटेंशन, फिर हमें और कोई बातें याद नहीं है। और वैसे भी अभी तो आप लोगों की भी प्रैक्टिस तो हो ही गई है ना, इतना ज्ञान सुना है, रोज बाबा की मुरली हम सुनते हैं, तो इतनी तो प्रैक्टिस है। अभी जब आए हैं तो और दुनिया की बातें, अपने घर की बातें या और सब क्यों याद करेंगे? उन्हों की याद तो भूल ही गई ना, कल से आए हो नहीं धन, हाँ भले आज शुरुआत बोलते हैं पर आए तो कुछ कल से हैं।
कोई आज सवेरे आए हैं, कोई अभी भी आए हैं।
हाँ, परंतु उधर से भी तो चलते वो ही है ना, जाना है पहुंचना है पहुंचना है, तब से लेकर तैयारी है ये। तो यहाँ जाना है पूरा हो गया, यहाँ बाबा का प्यार लूटना है, बस प्रेम से बाबा को आंखें बाबा को देखे, और वो देखी बाबा को ऐसे देखे जो हमारे नूर में बाबा दिखाई पड़े, ऐसा हमारे अंदर बाप समा जाए। बस ये अगर आप ये सोचो ही, तो ये सोच ही एक तरफ खुशी और दूसरे तरफ लगन, फिर लगन हमारी छूटेंगी नहीं, क्योंकि लगन का आधार हमारे विश्वास पर, हमारे सोच पर। जब विचार में हमें है, बस हमें बाप के साथ ही अपना ये पूरा टाइम बिताना है, तो आपे ही बाबा की क्या क्या बातें याद आती रहती है। खुद को देखो, अभी तो बाबा भी हम बच्चों को यही कहते हैं, बच्चे मैंने सब खजाना तुमको दे दिया, अभी स्वयं स्वयं को चेक करो, अभी अपने को चेक नहीं करो बैठ के, जो कुछ भरना है उन बातों को, उस बातों की स्मृति कितना समय उस स्मृति बनी रहे। बाबा से प्यार, वो कौन सी बातें याद आती है जो हमारा प्यार इमर्ज होता जाता है, महसूस होता जाए, और अंदर वो खुशी जागृत होती जाए, तो ऑटोमेटिकली ये सब कुछ होते भी उसके प्रति कोई विचार नहीं चलेगा। स्मृति माना विचार, उसमें एक ही विचार सदा बना रहे, तो उसकी खुशी। एक ही विचार मना एक ही शब्दों से थोड़े, उसका अंत, बाप के अंत में जाना, बाप कितना बेहद क्या क्या उसमें सारी सृष्टि की नॉलेज, तो ड्रामा की नॉलेज भी याद आ जाती है। उसमें कौन सी अच्छी बातें वो याद करके और हमारी खुशी इमर्ज होती जाए। तो तपस्या में अंदर ही अंदर बाप से मिलन और बाप से मिला हुआ खजाना, उसका हमारे अंदर चिंतन। तो चिंतन से वो चिंतन की धारा हमारी चेतनता, चेतन कौन है? आत्मा चेतन है। तो ये चिंतन की धारा हमारी चेतनता, अर्थात जो बाप में भरा हुआ है, वो सारी नॉलेज हमारे में भरती जाएंगी। और जब वो चेतनता भर जाती है तो उससे हमारा चेहरा भरपूर हो जाएंगे ना। बाबा ज्ञान को खजाना रतन बोलते हैं। जब बहुत खजाना मिल जाता है तो खुशी से फूले नहीं समाते, तो हमारा चेहरा खुशनुमा, चेहरा सदा खुशनुमा, नैनों में वो रूहानियत समाई हुई। रूहानियत, रूहानी चेहरे के नैन कैसे होते हैं? उस रूहानियत का नैनों में स्नेह नजर आता है। तो रूहानी स्नेह संपन्न दृष्टि बनी रहे, जो देखते हुए जैसे हम अंदर देखते हैं, शरीर बाहर है पर अंदर आत्मा जो अनादि अविनाशी शुद्ध आत्मा है, स्वयं भी मैं शुद्ध आत्मा, जिसको देखते हैं वो भी बाबा का बच्चा शुद्ध आत्मा है। जब ऐसी स्मृति हमारी जागृत रहती है तो शुद्धता उसमें नेचुरल स्नेह और शांति समाई हुई है। हम अपने शांति स्वरूप और वह ईश्वरी परमात्म स्नेह नेचुरलिटी से ऐसा अनुभव करें जो जैसे वो हमारे में समाया हुआ है, समा जाए और हमारा स्वरूप नेचुरल रूहानी स्नेह स्वरूप बन करके, और उस रूहानी स्नेह से जब देखो तो शांति के वाइब्रेशंस हमें आकर्षित करते रहेंगे। फिर देखो आपको दिल नहीं होंगी कुछ मुख से बोले, और ऐसे जैसे अंदर में हम बाबा के बच्चे आपस में वो रूहानी मुलाकात कर रहे हैं, अपनी अनादि स्मृतियां जागृत हो गई हैं। कल्प पहले वाली स्मृति, उसमें कभी स्वर्ग की बातें, कभी स्वर्ग का स्वरूप, कभी अपना अनादि प्रकाश स्वरूप, वो प्रकाश पुंज कैसा है बाप और हम उसके बच्चे कैसे हैं। ऐसे अंदर ही अंदर फिर देखो हमारी तपस्या। हमारी तपस्या वो नहीं है जो हम एकदम बैठो तो ऐसे ही हो, खुशी संपन्न खजानों से भरपूर ज्ञान रतन बाबा ने हमें कम नहीं दिया है। वहाँ भी जब हम भले हम जब कराची में रहते थे तो बाबा हमारे साथ नहीं रहते थे, बाबा अलग रहते थे, हम अलग रहते थे, परंतु कभी कभी आते थे घंटा दो घंटा, उसमें इतना खजाना मिल जाता था जो दिन भर तो क्या 8 दिन वो खजाना हम अपने अंदर याद करते रहे, इतना खजाना। तो वो तो दिन कहेंगे वर्णन करो विस्तार करो तो बहुत है, और सार में कहो तो इतना ही कहेंगे। तो अब तो सार समा गया ना, विस्तार से फिर सार में आ गए, तो सार स्वरूप बन करके जब सार अंदर में समाया हुआ है तो ऑटोमेटिकली उस सार का विस्तार अपने आप क्योंकि विस्तार से सार होता है, सार स्वरूप बन करके और फिर उसके विस्तार में हम खुशियां मनाते रहें अथवा उस खुशियों में झूलते रहें। अब आए हो मधुबन में, चांस मिला है, देखो आपको भी खुशी है कि अभी मधुबन में हमें आने का चांस मिला, क्योंकि मधुबन याद दिलाता है बाप का घर। बाप जिस रूप में आए, जिस रूप से हमें साधना सिखाई, उसको तो साधना की जरूरत नहीं है, परंतु हमें सिखाने के लिए तो वो भी, उसको भी करनी पड़ेगी ना। तो जिस रूप से हमें साधना सिखाई, वो स्वरूप से यहाँ रह करके साधना सिखाई, तो इस मधुबन के अंदर वो वाइब्रेशन, देखो कोई भी प्रोग्राम चलता रहेगा फिर भी आपको यहाँ शांति की कशिश होती रहेगी। तो अपने में हम शांति इतनी भर के जाए, जो भी कोई ऐसी परिस्थिति अशांति वाली आए, हमारा शांति रूप अंदर ऐसा इमर्ज रहे जो अशांत समय भी हम घबराए नहीं, अशांति हमारे अंदर घुस नहीं सके। ये सारा मदार हमारे निश्चय और अटेंशन पर है। जितना हम अटेंशन और जितना खुशी खुशी से हम अपने अंदर ये बातें याद करेंगे, वो हमें अंदर याद बनी रहेंगी। याद को कायम रखना, ये भी तो मैं आत्मा चेतन हूँ ना, अविनाशी हूँ, अनादि हूँ। अनादि वस्तु की कितनी शक्ति है, देखो बाप अनादि अविनाशी है, उसको सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज कितनी इमर्ज है, हमें कितना स्पष्ट रीति से सारा जैसे कि सत्युग से लेकर कलयुग दिखा दिया, ऐसी नॉलेज बाबा ने दी है। तो हम भी अपने में वो इतना भर दें, भले वहां भी अभ्यास यही रहता है, परंतु वहां समय बटा हुआ है, यहाँ पूरा ही समय हमें इसके लिए है। जब पूरा समय इसके लिए है तो उसमें भिन्न भिन्न प्रकार का अनुभव, कभी खजाना याद करके उन रत्नों से खेलते खेलते, और बाबा ने दूसरी विधि, अपने आप से बातें करो, बाप से बातें करो। बाप से क्या बातें करेंगे, बाप के साथ प्रेम की बातें। जब हम आपके साथ रहते थे तो जब रहते थे याद आएगा, तो अंदर ही अंदर आत्मा को इमर्ज होगा कि बाप हमारे साथ है, और जो याद करेंगे रहते थे तो क्या क्या महसूसता होती थी, क्या क्या रूप था, वो जैसे जैसे याद करते रहेंगे अंदर से वो फीलिंग इमर्ज होती जाएगी। ऐसे अगर दो चार बार थोड़ा अपने पर अटेंशन रख करके अगर अनुभव किया, तो वो आपका नेचुरल याद बनी रहेंगी, और फिर चलते फिरते उठते बैठते वो ही दर्श्य जो अंदर अनुभव किया है, वो आपको प्रैक्टिकल में अनुभव कराता ही रहेगा। अपने ही पुरुषार्थ का अनुभव करना तो अपने को ही है। वैसे भी कहा जाता है बाप हमें सिखाते हैं, परंतु अपने लिए करना तो खुद का है। कहावत है, जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा। तो ये कहावतें तो है किस आधार पर, जब ऐसे प्रैक्टिकल है उसकी कहावत है। तो हम जो प्रैक्टिकल है उसको अपने में अनुभव करें, करते हैं परंतु सदा बना रहे। अब ये लक्ष्य रखें, स्मृति हमारी सदा जागृत रहे, उसकी विधि यही है यहाँ चलते, क्योंकि यहाँ अर्थ आपको काम कोई नहीं है, बस यहाँ अपनी स्मृति निरंतर बनी रहे, ये अंदर में पक्का करके देखना है। और फिर रात को हम तो ऐसे करते थे, हरु भरु रात को क्यों अपने को चेक करें, जब भी थोड़ा टाइम मिले, देखो दिन को आराम करते हैं पर कितने चेकिंग कितने टाइम में होंगी अंदर की, पता तो रहता ही है, दिन भर तो चलता ही है। उस समय भी अपने को सुबह से लेकर अभी तक जो जो मैंने लक्ष्य रखा बरोबर वो उसी रीति मैंने अपने को चलाया, रिमार्क लगा दू अपने पर। ये जो इधर अभी अभ्यास अपने को दृढ़ता से करेंगे और वो अनुभव करेंगे तो वो आपका वहां भी कायम रहे, वो ही अभ्यास हमें मदद करे। बाबा हमें मधुबन में आने का चांस इसलिए देते हैं तो फुर्सत से यहाँ आकर के, जब यहाँ और कोई आपको लौकिक बातों का बंधन नहीं, जब है अभी इधर बाबा और बाबा के साथ बाबा के घर में है तो बस वही बातें ऐसी जो बाबा पक्की कराना चाहते हैं उसको हम पक्का करें और अपना एग्जाम लेते रहें। फिर देखें हम एग्जाम में कितना पास हुए हैं, पास होंगे तो खुशी होंगी। और जहां जहां देखो वो फौरन ही उसी समय अपने को चेक करो, जब ऐसा एक दो ऐसा अटेंशन रखेंगे तो फिर ये ऑटोमेटिकली अभ्यास हो जाएगा, चलते फिरते आप ही वो याद आती रहेंगी, चेकिंग भी आप ही होती रहेंगी, क्योंकि ये चेकिंग रखना ये है अपने को सीधे रास्ते पे चलाना, इधर उधर भटकना नहीं। इसलिए मधुबन का चांस मिला है, यहाँ बाप की स्मृतियां और हमें जो खजाना मिला है और समय समय पर जो बाबा के हिस्ट्रियों के अनुसार चरित्र सुने हैं उनमें से जो जो बातें अच्छी लगे हमारे सामने तो सब सैक्रीन के रूप में आ गए ना, क्योंकि साथ रहे इतना समय तो इतना विस्तार सैक्रीन के समान है। सैक्रीन वही शुगर डालो दूध में तो कितनी डालनी पड़ेगी और उसकी सैक्रीन कितनी डालते हैं, परंतु मिठास वही होता है। तो अपने पास वो सैक्रीन है, जिस सैक्रीन से बस बाबा को याद किया तो कभी कोई बात कभी कोई बात कभी कोई बात याद आती रही। सार तो यही है सदा, क्यों बाबा ने आज भी बोला ना कि क्यों बाबा कहते हैं निरंतर याद करो, क्यों बार बार बाबा हमारा ध्यान खिंचवाते, याद है उसका जवाब, निरंतर याद करो बाप की याद बनी रहे, क्यों बाबा ये हमें कहते हैं। विक्रम विनाशो, आज बाबा ने क्या कहा, क्योंकि बाबा ने आपको पावन बन करके पावन दुनिया का कार्य बनाने का कार्य दिया है, तो उसके लिए जब निरंतर याद होंगी तो जो भी हमारा पुराना खाता है अपने आप खुद चुकतु, क्योंकि अनेक जन्मों का खाता है वो खाता, ये योग अग्नि है। तो योग अग्नि, हम लोग जब योग में बैठते थे भट्टी में सचमुच हम लोग बैठते थे इतने लाल लाल हो जाते थे, गर्म हो जाते थे, जैसे सचमुच अग्नि, ये तो अभी शब्द कहते हैं उस समय ऐसे नहीं कहते पर वो महसूस, हम उसको शक्ति बोलते थे, ऐसी महसूसता होती थी एकदम, इतने गर्माइश, जैसे गायन है ना शक्ति रूप, तो हम शुरू में शिव शक्ति रूप याद करते थे, चलते फिरते आत्मा रूप याद करते थे, परंतु जब तपस्या में बैठते थे तो शिव शक्ति स्वरूप में वो याद करते थे। तो ऑटोमेटिकली शक्ति स्वरूप की वो शक्ति जैसे हमें, और कभी कभी तो बताते थे देखने वाले तो जैसे चेहरा भी बड़ा लाल लाल हो जाता, तो जैसा लक्ष्य रखो आत्मा के अंदर वो शक्ति है जैसा लक्ष्य रखो। और इसीलिए क्योंकि आत्मा बाप ने कहा जाता है जैसा बाप वैसे बच्चे, तो बाप की ये विशालता जो हम बच्चों का रूप भी अपना जैसा बनाया है और क्वालिटीज ओरिजिनलिटी में हमारी अपने जैसी रखी है, परंतु उन क्वालिटी से आधा कलब तो चले पर धीरे धीरे जो फिर परिवर्तन आ गया है उसके लिए बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको फिर से अपनी ओरिजिनलिटी रूप में लाने के लिए। तो हम अपनी अनादि और आदि स्वरूपों को याद करते हुए पूजनीय स्वरूप भी हमारा ही है। बाबा ने कितना ऊंचे ऊंचे हमारे रूप बना करके हमें इस सृष्टि पर पाट दिया है, ऐसा अपने को भाग्यशाली समझ करके और उन्हीं स्मृतियों से अपने अंदर वह खुशी वह क्वालिटीज जो हमें बाबा ने बताई है वो हम अंदर याद करके इमर्ज करें, तो उसकी क्या क्या फीलिंग होती है, वो जब जीवन में है तो वो जीवन कैसी बनती है वो अपने को आभास होगा। योग की वो शक्ति है जो हमारा आदि अनादि स्वरूप है ता प्रैक्टिकल, उस प्रैक्टिकल स्वरूप की फीलिंग हम योग के द्वारा अभी भी अनुभव कर सकते हैं। जब योग के द्वारा हम अनुभव कर सकते हैं इसलिए हमें योग की बड़ी आवश्यकता है और योग कनेक्शन बाप के साथ बुद्धि का योग और कोई संकल्प न उठे। देखो इतने वो हम कितना समय रह सकते हैं, और अगर उठे तो जो बाप का खजाना है जो बाप का स्वरूप है जिन नजर से बाप हमको देखते हैं वो बाप की नजर अपने ऊपर अनुभव करते नहीं। आत्मा की वो शक्ति है जो अपने अनादि और आदि गुणों को स्मृति में लाने से अपना अनुभव भी कर सकते, क्योंकि आत्मा तो फ्लाइंग स्क्वाड बाबा बोलते हैं बस अंदर ही अंदर, क्योंकि इतनी सूखी हम जब चाहे जहां चाहे जा सकती है। तो जब वो स्मृति आत्मा का ही तो ये चेतनता है, संकल्प शक्ति और स्मृति की शक्ति। तो स्मृति के अंदर जब हम बाप की बातों को बाबा हमें वो ही स्मृति दिलाते हैं, जब वो स्मृति हमारी मान्यता में आती है उस मान्यता को हम अपना बाप के बताई हुई बातों को अपना समझ करके वो अपना रूप बाप की नॉलेज और योग के आधार पर अंदर हम अनुभव, क्योंकि योग से उस घर अगर हमारा योग ठीक लगा हुआ है उस समय मैं आत्मा बिल्कुल शुद्ध हूँ, कोई और संकल्प नहीं है। तो जो बाप मुझे जो मैं बाबा ने बताया है और उसको उस विश्वास से मैं याद करती हूँ तो उसका अनुभव बाबा हमें अंदर कराते, उस समय वो उसी लहर से उसी बाप के स्नेह से उस अनुभव को हम अंदर ऐसा पक्का कर दें, फिर चलते फिरते उसका हम फिर अभ्यास याद करते रहे। अगर इस प्रकार हमने अटेंशन दिया तो काफी हमारे में उसका परिवर्तन सहज, और जब परिवर्तन आता है तो ऑटोमेटिकली आत्मा शक्तिशाली बन जाती है, जिस शक्ति के आधार से जो सोचेंगे वो प्रैक्टिकल अनुभव में ला सकेंगे। हमें अभी अपने अंदर उस शक्ति को जागृत करना है जो बाबा हमें कहते हैं, हमें मान्य है, मानते हैं, उसको हमें अपने जीवन में अनुभव करके सदा काल बनाना ही है। ऐसा लक्ष्य अपना पक्का रख करके हम अभ्यास करें, चलते फिरते इधर उधर आपस में ऐसे ऐसे बातें न करें, सबको ऐसे लगे जैसे फरिश्ता शान चेहरा, किसको भी देखे मुस्कुराता हुआ चेहरा, रूहानियत संपन्न दृष्टि, खुद को भी लगे हाँ अभी हमारे अंदर उस शक्ति जागृत होती है। उस खुशी से हम ये अपनी बट्टी करके अपने को शक्ति, अपने को अर्थात आत्मा को शक्तिशाली बना करके यह मधुबन की शक्ति अपने साथ ले जाएं। ऐसी शुभ भावनाएं आप सब आए हैं, हमें भी खुशी है। चलो ऐसे मौका लेते रहें, हम भी आपके साथ, हमें भी तो मिलता है ना ये अपने को फिर से रिफ्रेश करने के लिए, हमारे लिए फिर ये है। बाबा ने सेवा दी है, करण करावन हार चाहते हैं। अब ये मेरे बच्चे जल्दी जल्दी, बाबा ने कहा ना विश्व परिवर्तन की डेट को नहीं याद करो, जो पूछ पूछ करनी पड़ती है, कभी है बाबा, कभी है बाबा, डेट बताओ, अपने से पूछो, मैंने स्वयं का परिवर्तन पूरा किया है, मैं अपनी डेट फिक्स करूं इतने समय में मुझे करना है। तो देखो जब संगठित रूप में स्व परिवर्तन नजर आ जाएगा तो विश्व परिवर्तन तो धराधर, देखो ना क्या क्या होता रहता है, अभी और क्या आएगा नजर।
दादी अभी लगता भी ऐसे है ना कि जैसे अभी आए हैं तो ऐसा लग रहा है बाबा लास्ट फाइनल टच दे रहा है अपनी आत्माओं को, क्योंकि ये कोई कम बात नहीं है। मधुबन में आए हैं इन लोगों ने, तो मधुबन देखा ही नहीं, माना देखे
उधर रहती है तो कहते हैं कभी ऐसा समय मिले हम फुर्सत से,
और अभी तो जो आ रहे हैं दादी इन्होंने तो कभी मधुबन में रहकर ही नहीं देखा, चांस मिला फाइनल टच,
इधर ब्रशअप कर रहा है, कुछ भी अपना याद नहीं करो, लौकिक आना भी नहीं चाहिए, आता भी नहीं होगा, पर लक्ष्य पक्का ये करना है, लक्ष्य, और देखो बरोबर हम अपने लक्ष्य के अनुसार अनुभव कर रहे हैं, अपने को टाइट करने का विधि आ जाएगी ना तो फिर उड़ना सहज। ओम शांति।
दादी जी ने दादी जी ने हम लोगों को विधि सिखा दी, जब योग में बैठना है तो किस स्मृति में बैठना है, मैं शिव शक्ति हूँ, फोर्सफुल, ऐसे ढीले होकर नहीं बैठो, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसी ढीली सी आत्मा नहीं चाहिए, शिव शक्ति हूँ। और जब कर्म में आएंगे तो कैसे चलना है, कैसे बैठना है, दादी जी के पास ऐसे योग कैसे करना है, बहुत सी हम समय प्रति समय दादी के मुखारविंद से ऐसी विधियां सुनते रहते हैं, जो दादी ने खुद भी उनका अभ्यास किया है, इन पर रिसर्च किया है, अपना आदि अनादि स्वरूप जो बाबा ने साकार में भी कहा, अंत में निराकारी निरअहंकारी निर्विकारी, तो सचमुच ये अंतिम तपस्या हम सब बाबा के बच्चे करने के लिए यहाँ आए हैं और इस तपस्या को करें।